ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 8 दिसंबर 2024 के लिए है। विषय: परमेश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ, नीति वचन: यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा सिद्ध किया। उत्तरदायी ध्यान भजन संहिता: हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम पृथ्वी पर क्या ही परतापे में है। तूने अपना विभाव स्वर्ग पर दिखाया है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कर दिया है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता: यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। वो आकाश को मेघों से छाया देता है और पृथ्वी के लिए मी की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। यहोवा अपने डरवियों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। सभोपदेशक: हर एक बात का एक अवसर और प्रतीक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वो आदि से अनंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा सिथर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। राजे: यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र अहियाब इसराइल पर राज्य करने लगा, और उमरी के पुत्र अहियाब ने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। राजे: और तिशबी एलिया जो जलाद के परदेशियों में से था, उसने अहियाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा ना औस पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सैदून सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीना कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मी न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। राजे, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अखियब को दिखा और मैं भूमि पर मी बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अखियब को दिखाने गया। उस समय सामरिया में एक अकाल भारी था। फिर एलिया ने अखियब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सुनसराहट सुनाई पड़ती है। तब अखियब खाने पीने चला गया और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समंदर की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, मैं कुछ नहीं देखता। एलिया ने कहा, फिर सात बार जा। सातवीं बार उसने कहा, देख, समंदर में से मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अखियब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अखियब सवार होकर यजरील को चला गया। राजे, जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग जलजाल तक चले। राजे, तब अलीशा जलजाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हांडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर अंदराइयां तोड़ लाया और फांक फांक करके पकने के लिए हांडे में डाल दिया और वो उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वो चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में माहूर है और वो उसमें से खा ना सके। तब अलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दो। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। यूएल, हे सैनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के सम्मान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलक और हासिल ने और गजमान नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे, तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा ईश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। और मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और घुएं के खंभे दिखाऊंगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सेऊन पर्वत पर और यरूशलम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान के ब्रह्मांड में सभी कुछ उसे व्यक्त करता है। वो दिव्य सिद्धांत है, प्रेम, सर्वभाविक कारण, एकमात्र निर्माता और कोई अन्य आत्म अस्तित्व नहीं है। वो सर्व समावेशी है और वास्तविक और शाश्वत और अनय कुछ भी नहीं है। वो सभी जगह बढ़ता है और अनंत आत्मा या मन को छोड़कर ऐसी सर्वविद्या पिता और वैयक्तित्व का कल्पना करना संभव है। मनुष्य जो परमेश्वर की सामर्थ को प्रतिबिंबित करता है, सारी पृथ्वी और उसकी सेना पर प्रभुता करता है। शुरुआत से लेकर अनंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा एलिया और अलीशा ने भी किया। क्रिश्चियन साइंस मानसिक के रूप में सभी कारणों और प्रभावों को बताता है, शारीरिक नहीं। दिव्य विज्ञान में मनुष्य सहित ब्रह्मांड आध्यात्मिक समझ से अपूर्ण और शाश्वत है। पृथ्वी की रचना करने वाले यौगिक खांच या एकमात्र पदार्थ जो संबंध घातिक सामग्री एक दूसरे के साथ रखते हैं, आकाशी पिंडु की परिमाण, दूरी और क्रांतियां कोई वास्तविक महत्व नहीं है। जब हमें ये याद आता है कि उन सभी आध्यात्मिक तत्वों को मनुष्य और ब्रह्मांड के अनुवाद द्वारा आत्मा में स्थान देना चाहिए, इसके अनुपात में मनुष्य और ब्रह्मांड शाश्वत और समान जैसा पूर्ण पाए जाएंगे। भौतिक इंद्रियां और मानव अभिधारणाएं आध्यात्मिक विचारों को भौतिक विश्वासों में अनुवादित करेंगी और कहेंगी कि मानव सिद्धांत अनंत सिद्धांत की बजाय ईश्वर, दूसरे शब्दों में दिव्य प्रेम बारिश का जनक है जो उसकी बूंदों की भीख मांगता है, जो अपने मौसम में मजाजा रोथ को आगे लगाता है और अपने बेटों के साथ अर्कातुरास का मार्गदर्शन कराता है। ईश्वर सब कुछ मन से रचता है, पदार्थ से नहीं। पौधा बीज या मिट्टी के कारण नहीं बढ़ता, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि विकास मन का शाश्वत आदेश है। नश्वर विचार जमीन में गिरता है, लेकिन अमर सर्जन आत्मिक विचार ऊपर से आता है, नीचे से नहीं, क्योंकि मन ही सब कुछ बनाता है तथा निमन शक्ति द्वारा बनाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। आत्मा मन के विज्ञान के माध्यम से कार्य करती है, मनुष्य को कभी भी जमीन जोतने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे मिट्टी से श्रेष्ठ करती है। एक भौतिक आधार पर विश्वास, जिसमें से तर्क का संगतता को घटाया जा सकता है, धीरे धीरे एक आध्यात्मिक आधार के विचार से उपज रहा है। हर प्रभाव के कारण के रूप में मन से दूरी की ओर देख रहा है। भौतिक आबादी परिकल्पनाएं अंतिम संघर्ष में तत्वमीमांसा को चेतावनी देती हैं। इस क्रांतिकारी काम में गोफन लेकर चलने वाले चरवाहे बालक की तरह स्त्री भी जूलियत से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती है। वर्चस्व के लिए इस अंतिम संघर्ष में अर्ध मेटाफिजिकल सिस्टम वैज्ञानिक तत्वमीमांसा को कोई प्राप्त सहायता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके तर्क भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही के साथ साथ मन के तत्वों पर आधारित हैं। ये अर्ध मेटाफिजिकल सिस्टम एक और सभी पैंथेस्टिक हैं, और पैंडोनीम का स्वाद एक घर जो खुद के खिलाफ विभाजित है। शास्त्र बहुत पवित्र हैं, हमारा उद्देश्य उन्हें आध्यात्मिक रूप से समझना होगा। केवल इस समझ से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड का सही सिद्धांत भौतिक इतिहास में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। प्रेरित विचार ब्रह्मांड की एक सामग्री, कामुक और नश्वर सिद्धांत को त्यागता है और आध्यात्मिक और अमृता को अपनाता है। निहेश्वर्थ भाव से प्यार, सुंदरता और रोशनी में नहाया हुआ हमारे पैरों के नीचे की घास चुपचाप रहती है। नमर पृथ्वी के वारिस होंगे। मामूली ऑर्बिट्स इसकी प्यारी सांस को स्वर्ग भेज देता है। महान चट्टान छाया और आश्रय देती है। चर्च गुंबद से सूरज की रोशनी कैद में झला काटी है। बीमार कक्ष में घूमती है, फूल को रोशन करती है, पारिदृश्य को सुशोभित करती है, पृथ्वी को आशीर्वाद देती है। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। मौसम, समय और ज्वार, ठंड और गर्मी, अक्षांश और दिशांतर के साथ आएंगे और जाएंगे। कृषक पाएंगे कि ये परिवर्तन उनकी फसलों को परिभावित नहीं कर सकते हैं। तू उसके वस्त्र के नियम बदलेगा और वो तो बदल जाएगा। समुद्र की मछलियों और हवा के झोंकों के ऊपर वायुमंडल और गहराई में जलयान का प्रभुत्व होगा। खगोला शास्त्री अब सितारों की ओर नहीं देखेंगे, वो ब्रह्मांड से उन पर नजर रखेंगे, और फूलों वाला अपने फूल को उसके बीज से पहले पाएगा। भौतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। प्रेम अनंत में सिद्ध भाव के समय को चिन्हित करेगा और आध्यात्मिकता का पालन करेगा, क्योंकि प्रेम आत्मा है। इससे पहले के त्रुटि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, सामान्य सामग्री के दिन इच्छाओं में रुकावटें आएंगी, पृथ्वी निरस और उजड़ जाएगी, लेकिन गर्मी और सर्दी, बीज और फसल हालांकि बदले हुए रूपों में अनंत तक जारी रहेंगे, जब तक कि सभी चीज़ों का अंतम आध्यात्मिककरण नहीं हो जाता। सबसे गहरा समय सुबह से पहले होता है। ये भौतिक दुनिया अब भी प्रॉस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। जितना विनाशकारी मामला बनेगा, उतनी ही उसकी निष्पक्षता दिखाई देगी, जब तक कि वो भ्रम में अपने नश्वर क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तश विश्वास एक ऐसी सच्चाई से गुजरता है जो बिना सीमा के गुजरती है, जहां परमात्मा प्रेम से नष्ट हो जाता है, ये भ्रम होना भी बंद कर देता है। ये विनाश के लिए बनाने वाला दुस्साहस है। ये विश्वास जितना अधिक भावतिक है, उतनी ही स्पष्ट इसकी त्रुटि है। जब तक ये दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी मामलों पर हावी है, और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। ये धर्मशास्त्र संकेत करता है कि आत्मा की सर्वोच्चता के सामने सभी पदार्थ लुपट हो जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।